الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. آج هم إن شاء الله تعالى سورة الجاثية آیت نمبر 22 سے 37 تک کریں گے. سورہ کو بھی مکمل کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، اور اس پارے کو بھی. کچھ بہت اہم چیزیں آج کے سبق میں سمجھنے والی ہیں. آپ لوگوں کی بہت توجہ کی ضرورت ہے. یہ باتیں آپ ویسے پڑھ لیں تو ترجمہ تو بہت آسان ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جو اب تک الحمدللہ ہمارے ساتھ یہاں تک کورس میں رہا ہے، ان میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ترجمہ نہیں آتا اس کا کرنا. بغیر میرے بتائے ہوئے بھی آپ ان آیات کا ترجمہ الحمدللہ کرنے کے قابل ہیں. اتنا مجھے کانفیڈنس ہے کہ اگر آپ ماشاءاللہ سے ٹیسٹ دیتے رہے ہیں، سبق سناتے رہے ہیں، تو آپ کے لیے یہ ترجمہ کرنا بالکل بھی مشکل نہیں. مگر ہاں، جو آیات کی ڈیپتھ ہے نا، وہ سمجھنا ضروری ہے. اور یہیں پہ آ کے ہمیں اس کی جو گہرائی ہے اس میں جانا ضروری ہے، کیونکہ عمل تبھی بدلتا ہے جب انسان غور و فکر کرتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں بار بار تفکر کی بات آئی. کیوں نہیں وہ یتفکرون، وہ غور و فکر کرتے؟ افلا یتفکرون، کیوں نہیں تو وہ غور و فکر کرتے؟ کیونکہ غور و فکر کریں گے تو پھر ہی انسان کو بات کی گہرائی تک پہنچنے کا موقع ملے گا، اور تبھی انسان اپنے عمل کو درست کرے گا. تو دیکھتے ہیں آج کی آیات ہمیں کیا سکھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے والا بنائے. وخلق اللہ السماوات والارض بالحق، اور پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو بالحق، ساتھ حق کے. اب سب سے پہلی بات یہ کہ یہ آیت جو ہے، یہ پچھلی آیت کے لیے بطور دلیل لائی گئی ہے. پچھلی آیت میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ کیا ان لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جنہوں نے بس برائیاں کی وہ انہی کے برابر کر دیے جائیں گے جو نیک عمل کرتے رہے، پستے رہے اس دنیا کے اندر، خام خواہ جن کو ایک نیکی کا بخار چڑھا رہا تو آج جا کے سارے ہی ایکول ہو گئے، تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ جیسے دنیا میں لوگ کہتے ہیں نا، نیکی کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں. کیا فائدہ جناب جی، ہم اپنے آپ کو اتنا مشکل میں ڈالیں، ہم لوگوں کی باتیں سنیں، ہم تانے سنیں، ہم آؤٹ کاسٹ ہو جائیں، لوگ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، دوستی نہیں کرتے، ہمیں ڈفرینٹ القابات دیتے ہیں کہ یہ ایسی اور ایسی، تو کیا فائدہ ہمیں؟ چلو اسی طرح رہیں جس طرح سب رہتے ہیں. چلو تم ادھر کو ہواؤ جدھر کی، سب برابر ہی جی. آج کل جھوٹ چلتا ہے، سچائی کا تو زمانہ ہی نہیں، نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں. ایسے آپ نے سنے ہوں گے نا یہ باتیں، کیونکہ اس دنیا میں واقعی ایسا لگتا ہے کہ جیسے بس سبھی برابر ہو گئے، بلکہ وہ اچھے رہ گئے جو جھوٹ بول رہے ہیں، جو ملاوٹ کر رہے ہیں، جو کرپشن کر رہے ہیں، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. جی ہمیں دیکھو، ہم تو ایسے ہی خام خواہ نیکی کا وہ کر کے بیٹھے ہوئے، اور ہمیں کیا فائدہ ہوا، ہمیں کیا ملا؟ یہ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا، ٹھیک ہے. ہم عام ڈسکشنز میں بھی یہ کہتے ہیں، اور اس طرح سے ہم ایک طرح سے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ عدل و انصاف تو کوئی ہے نہیں، لہٰذا اچھا وہی رہ جاتا ہے جو بس بائی ہک اور بائی کروک کسی طرح بھی اپنا فائدہ دیکھ لے. چھوڑو اس کو کہ کیا گناہ ہے اور کیا نیکی ہے، چھوڑو اس کو کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، سب چلتا ہے یہاں پہ، تم بھی وہی کرو جو سارا زمانہ کر رہا ہے. ایسی چیزیں سنی ہے نا آپ نے. یہ جو آیت 21 ہے، یہ اسی چیز کی نفی ہے. یہ تم کیا سمجھتے ہو سب برابر ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو ان کا جینا اور مرنا برابر ہے؟ اس دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ सब लूट खसूट करके भी तो ऐश कर रहा है। एक जो है वो हलाल के चक्कर में पड़ के उसके बच्चों की जायज हाजतें भी ख्वाहिशात भी पूरी नहीं कर पा रहा, हैंड टू माउथ रह रहा है। लेकिन उसने तो कसम खाई भी, मैंने तो हलाल ही खाना है और हलाल ही खिलाना है। एक बंदा है कि नमाज के लिए वो उठ रहा है, चाहे रात को कितना ही थका हुआ सोया है। दूसरा है वो खराटे भरता हुआ सो रहा है, 10 बजे उठ रहा है, उसको कोई नमाज की परवाह नहीं, कोई किस चीज की परवाह नहीं। एक है वो भाग रहा है दुनिया के पीछे, दूसरे ने अपने आप को दीन के लिए वक्फ किया हुआ, वो अपना वक्त निकाल रहा है दीन के काम के लिए, इसकी रास्ते में मेहनत करने के लिए। तो क्या सभी बराबर ही हो गए फिर? क्या फायदा उसका? वो इतनी मेहनत करने लगा हुआ है, वो उसने इतनी कमाइयां कर ली, तो क्या सबका एक ही होना चाहिए? एक इसी तरह घरों के अंदर कई जगह पे जुल्म हो रहे हैं, वो लोग नहीं कुछ कह सकते, बोल नहीं सकते, आवाज नहीं उठा सकते, किधर जाएंगे? कुछ कहेंगे तो कौन सुनने वाला है, कौन उनकी दादरसी करने वाला है? यहाँ पे तो अदालतों में भी चले जाओ तो जिसके पास पैसा है वो ही जीत जाएगा, दूसरा है वो उसकी पास पावर है, कुर्सी है, उसके कॉन्टेक्ट्स हैं, वो कहता है आवाज निकाल के तो दिखाओ, तो कोई पूछने वाला नहीं। तो फिर क्या इसी तरह मर जाए और फिर खत्म हो जाए? एक पिस पिस के बेचारा मर गया, दूसरा जुल्म करते हुए दूसरी तरफ सोचता नहीं, उसको किसी का डर नहीं, वो यहां ऐश कर रहा है जुल्म करके भी। तो इसका इसको पूछा नहीं जाना चाहिए, इसका कोई हिसाब नहीं होना चाहिए? एक सबर कर करके थक गया सारी जिंदगी, उसने सबर ही किया, उसके आंसू भी निकले तो उनको पी गया, तो दूसरा है उसको कोई परवाह ही नहीं। आप क्या सोचते हैं? सबको बराबर कर देना चाहिए? ये इस्तफहामी इनकारी है। अम जो है अम, यानी ऐसा नहीं है, सवाल में ही इनकार है। तुमने क्या सोच रखा है कि अल्लाह ताला ऐसा कर देगा? दोनों का जीना मरना बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है। आप यहां पे भी देखें क्या बराबर लग रहा है आपको? एक है कि वो नमाजी है, वो अल्लाह से डर के जिंदगी गुजार रहा है, एक औरत हिजाब करती है, वो अपना प्रॉपर पर्दा करती है जैसे होना चाहिए, वो कितनी बातें सुनती है। दूसरी है जिसको कोई परवाह नहीं, जैसे तैसे भी घूम रही है, जैसे तैसे मर्जी घर से बाहर निकले, जहां मर्जी जाए, जिस तरह से मर्जी लोगों से बात करे, उसको कोई परवाह नहीं, कोई उसको पूछने वाला नहीं। तो क्या बात है कि वो एक बातें सुनती रहे हमेशा, ताने सुनती रहे, मजाक सहती रहे, दूसरे को कोई परवाह ना हो, तो अल्लाह ताला नहीं दे उसको जो अजर जिसने उसकी खातिर ये सारी ताने सुने, बातें सुनी? तो ये आयात हमें बताती हैं अल्लाह ताला के हाँ इंसाफ है, ठीक है? तो उसी की दलील यहाँ पे लाई गई कि तुम आसमानों जमीन को नहीं देखते, वो बिलहक का पैदा किए अल्लाह ताला ने। क्या मतलब हक का यहाँ पे मतलब क्या है? इंसाफ के साथ, अदल, जिसको असल वर्ड अदल है, इंसाफ तो आधा आधा देना होता है, अदल, अदल के साथ पैदा किए। इस कायनात में भी तुम अदल देखते हो, अदल क्या है? हर हकदार को उसका हक मिलना, ये अदल होता है। अल्लाह ताला ने हर एक को उसका हक दिया, आसमानों जमीन को इसके ऊपर ही पैदा किया, अदल पे। तो क्या इससे तुम्हें समझ नहीं आती कि जिसने कायनात के अंदर अदल कायम किया वो क्या इंसानों में अदल नहीं करेगा? जिस वक्त के इंसान उसके पास पहुंचेंगे तो क्या वो उनमें अदल नहीं करेगा? अब कोई कहता है कि नहीं जी, आप देखें ये दुनिया के अंदर तो ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये सब जालिम को कोई पकड़ नहीं रहा, फिर क्यों नहीं अल्लाह ताला पकड़ता जालिम को? देखो जालिम यहाँ पे कितना जुल्म कर रहे हैं, फिर कोई खुदा होता तो इनको पकड़ता ना, और शायद उसके अल्लाह ताला माफ करे नाउजु बिल्ला के उसके हाँ तो जुल्म की कोई पकड़ ही नहीं है और उसके हाँ कोई अदल ही नहीं है। ऐसा नहीं है। इसका जवाब क्या है? इसलिए कि अल्लाह ताला इस जहान में किसी को इम्तिहान के लिए भेजता है, नतीजे के लिए नहीं। इस जहान के बाद एक और जहान है जिसको उसने पैदा फरमाया ताकि जालिम को जुल्म की सजा दी जाए और मजलूम को उसका हक दिलाया जाए, मजलूम को उसके ऊपर अजर दिया जाए, उसको कॉम्पेंसेट किया जाए। दुनिया में अल्लाह ताला जालिम को ढील इसलिए नहीं देता कि अल्लाह ताला को पता नहीं, नऊज़ु बिल्ला, या वो पकड़ नहीं सकता, नऊज़ु बिल्ला, बल्कि इसलिए देता है कि शायद ये वापस पलट आए, शायद ये तौबा कर ले, शायद इसको समझ आ जाए। और मजलूम का फिर क्या कसूर के वो सहे, उसको अल्लाह ताला उसके सब्र का अजर देना चाहता है, उसके दर्जात को बुलंद करना चाहता है। और भी बेशुमार हिकमतें हैं जो हमें समझ शायद नहीं आए इस दुनिया के अंदर, लेकिन बेशुमार हिकमतें हैं इसमें। और यही बात यहाँ पे कही गई, वली तुजजा कुल्लू नफ्सिम बीमा कसबत, ये इसलिए अल्लाह ताला ने अदल से कायम किया और ताकि बदला दिया जाए हर नफ्स को बवजह उसके जो उसने कमाई की। वहुम ला युज़लमून, अदल के साथ अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया और एक दिन रख दिया कि उस दिन बदला दिया जाए। आज ये कायनात हमें बता रही है, ये जो चल रही है कायनात हक के साथ, अदल के साथ और बामकसद। दूसरा इसका क्या माना है, बामकसद, कि ये हक के साथ है यानी मकसद के साथ। अल्लाह ताला ने सब कुछ बामकसद पैदा किया। अब तुम बताओ कि अगर इसी तरह जालिम मजलूम वो जुल्म कर करके मर गया, वो सह सह के मर गया, वो नेक बन बन के वो उसने अपनी जिंदगी को मुश्किल के अंदर रखा, लेकिन अल्लाह ताला के अहकामात को ना तोड़ा, और दूसरे ने बेपरवाही की जिंदगी गुजार दी और इसी तरह मर गए दोनों, और उसके बाद दोनों को कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं मिलता, ना उसको जो नेक बन के रहा। अंबिया ने कितना सहा, उनसे ज्यादा क्या किसी ने सहना होगा जितना उन्होंने सहा। इसी तरह और लोग भी आप दुनिया में देखते हैं, कई इतने दुखी होते हैं, वो दुख काट के सबर करके उनको क्या मिला। तो अल्लाह ताला ने ये दुनिया अगर बामकसद बनाई है, आप देखते हैं हर चीज का कोई मकसद है। अब उठा के देख ले, जो कोई कीड़ा भी होगा ना, उसका भी कोई मकसद है। तो जब तुम देखते हो कि हर चीज एक मकसद के साथ अल्लाह ताला ने पैदा की, तो ये कायनात ये सारी बिला मकसद नहीं है। तो तुम बताओ कि इंसानों को अगर वो ऐसे ही छोड़ देता है, यानी वो मर जाए, खत्म हो गई दुनिया, दैट्स इट, तो ये तो बेमकसद पैदा करना हुआ ना, जिसका नतीजा ही कुछ ना निकले, वो तो चीज बेमकसद है ना। कि जैसे वो कहते हैं राम की लीला, यानी राम ने खेल में बनाई और फिर उसके बाद वो खेल चौपट कर दिया, खत्म, जैसे खेल खत्म हो जाता है, कुछ नहीं है ना, कोई हार ना कोई जीत ना कोई कुछ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, अल्लाह ताला कोई काम अबस नहीं करता, यानी बेकार नहीं करता, बेमकसद नहीं करता। अगर ये सब ऐसे ही वो खत्म कर दे और कोई डे ऑफ जजमेंट ना हो, कयामत ना हो, तो समझ लो कि ऐसे ही है कि बेमकसद ही पैदा किया और जब दिल करा तो तोड़ के खत्म कर दिए। तुम अल्लाह ताला से ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो आसमान और जमीन को बामकसद बनाए हुए, वो कैसे हो सकता है कि इंसानों का कोई मकसद ही ना हो। ये इसलिए ही कि एक दिन अल्लाह ताला ने रखा है ताकि बदला दे हर नफ्स को जो उसने किया, तब मकसद पूरा होता है, क्योंकि उसका नतीजा है, तो इसका नतीजा जरूर निकलेगा। ये नहीं हो सकता कि जिसका जो जी चाहे करे और मर जाए और कोई पूछने वाला ना हो उसका। तो ये कायनात भी बामकसद है और इंसान, तेरी पैदाइश भी बामकसद है, और ये कायनात भी अदल पे कायम है, और अल्लाह ताला अदल करेगा, वरना यहाँ पे तो अदल हो ही नहीं सकता। देखिए, एक बंदा है, वो इतने लोगों के साथ ज्यादती करता है, उनके हक मार लेता है, या कोई बंदा है वो कत्ल कर देता है, या कोई बंदा है वो ऐसे काम करता है जिससे दूसरे की जिंदगी तबाह होके रह गई, वो सारी जिंदगी ये पकड़ा नहीं गया, या अगर चलो पकड़ा गया तो इस जो कातिल था उसको एक ही दफा मौत आएगी ना, इसको तो 100 दफा मरना चाहिए कि इसने 100 कत्ल कर दिए, इसने एक बम फेंका और कितने लोग उससे दुनिया से चले गए। अब इससे बदला कैसे लिया जाए। तो जब सब चीजों में अदल है, क्या इसमें अदल नहीं होगा, कैसे अदल होगा। यहाँ पे तो अदल हो ही नहीं सकता, अगर उसको फांसी पे भी लटका देते तब भी अदल नहीं होता, तो फिर अदल कैसे होगा। उसके लिए लाजमी है कि एक दिन हो, इन सबकी ज्यादतियों का बदला इस बंदे से लिया जाए। आप समझ रहे हैं इस बात को, बहुत गहरी बात है ये। मैंने बताया आयात आसान है लेकिन बहुत गहरी है। तो इसलिए यकीन पुख्ता किया गया कि यकीन कर लो, एक दिन कयामत ने आना है, एक दिन तुम्हें खड़े होना है, एक दिन तुमने हिसाब देना है। क्योंकि जितना हमारा ये यकीन पुख्ता होगा उतनी ही हमारी जिंदगी सही डगर पे होगी। ख्याली बातें ना सोचे, पता नहीं क्या पता होना भी है कि नहीं, पता नहीं क्या पता, ये सब वो कोई हिसाब किताब का को तो पता है नहीं, किसी ने तो आके बताया नहीं। अगर नहीं किसी ने बताया तो फिर ठीक है, फिरौन वाली जिंदगी गुजार लो या मूसा अलैहि सलाम वाली गुजार लो, दोनों ही बराबर हो गए। फासिक फाजिर बन के रह लो, नाफरमान बन के रह लो, या फिर नेकुकार बन के रह लो, अल्लाह के फरमाबरदार बन के रह लो, दोनों एक ही बात हो गए। तो ये कि कैसे हो सकता है कि इस तरह से हो कि अल्लाह ताला सबको ही बराबर कर दे। तो ये खुशगुमानियां या खुशफहमियों में ना रहना, ये जो हम यहाँ पे बातें करते हैं बैठ के, कोई जी फर्क नहीं पड़ा, तुम्हें पता नहीं क्यों नेकी का बुखार चढ़ा हुआ है, तुम पता नहीं क्या किस दुनिया के अंदर रह रहे हो। भाई रियलिटी में रहो, यहाँ पे सब चलता है, कुछ फायदा नहीं होता इस चीज को करने का। दिस इज डिस्करेजिंग। एक जो कुरान पढ़ने वाला है उसके अंदर और दूसरे की सोच में यही तो फर्क है कि कुरान पढ़ने वाला कहेगा कि नहीं फर्क है, क्यों नहीं फर्क पड़ता, अल्लाह के हाँ सब बराबर नहीं हो जाने। अगर आज नहीं नजर आ रहा फर्क पड़ता हुआ तो कल नजर आएगा। आज ये अल्लाह ताला की हिकमत है कि आज वो बद को नहीं पकड़ा, नेक को अजर नहीं यहां पे मिलता हुआ नजर आ रहा, ये अल्लाह ताला की हिकमतें हैं इसके अंदर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो देख नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि किसी का रिकॉर्ड नहीं चल रहा, रिकॉर्ड कायम नहीं हो रहा, किसी का लिखा नहीं जा रहा। ये नहीं कि अल्लाह ताला बस ऐसे इग्नोर कर देगा, जैसे आज इग्नोर किया हुआ तो इसी तरह पर कल भी हो जाएगा। आज इनको छूट दी हुई है, आज इनको वो पकड़ नहीं रहा, आज इनसे सर्वे नजर किया हुआ है, आज इनको टाइम दिया हुआ है, मोहलतें दी हुई है, तो कल भी पता नहीं इसी तरह ये रहेंगे दनदनाते फिरते, ऐसा नहीं है। तो इस चीज को अपनी माइंड सेटिंग ना चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि जब इंसान ये कहने लगता है ना कि सारे ही बराबर हो गए, कुछ नहीं फर्क पड़ता, तो वो फिर उसकी इंक्लिनेशन किस तरफ होती है कि मैं भी लूटूं खसूटूं, मैं भी जो मर्जी करूं, मुझे क्या जरूरत है कि मैं ऐसे ही नेकी करके और अपने आप को मुश्किल के अंदर डाले रखूं। मुझे क्या मुश्किल पड़ी हुई है कि मैं लोगों की बातें सुनूं, मुझे क्या मुश्किल पड़ी हुई है कि मैं दीनदारी इख्तियार करूं। ठीक है, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। अच्छा फिर अब देखें आप, अफराइज ये भी इसके साथ ही मुतल्लिक बात है। अफराइता क्या भला तूने देखा, किसको अफराइता क्या भला तूने देखा, माने तखाजा इलाहु, जिसने बना लिया अपना इलाह, जिसने अपना इलाह किसको बना लिया, बुतों को, बंदरों को, हाथियों को, दरख्तों को। यहां पे कहा गया नहीं, हवा हो, ख्वाहिश नफ्स को, अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना लिया, अपना इलाह बना लिया, अपना खुदा बना लिया। ख्वाहिश नफ्स को भी खुदा बनाना होता है क्या? ख्वाहिश नफ्स को खुदा कैसे बनाया जाता है? ख्वाहिश नफ्स को इंसान, देखें जितना मर्जी कह देना कि मैं तो अल्लाह ताला की इबादत करता हूं, लेकिन अगर उसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना लिया है, वो कैसे है कि आप नोट करें कितनी दफा ऐसा होता है कि इंसान का किसी काम करने को दिल चाहता है और उसको पता भी होता है कि अल्लाह ताला ने इस काम से मना किया है, वो इससे नाराज होता है, लेकिन इंसान अल्लाह ताला के मना करने के बावजूद उस काम को करता रहता है, इसलिए कि उसकी ख्वाहिश है कि वो ये काम करे, वो अल्लाह ताला के हुक्म को बड़ा नहीं समझता, वो अपनी ख्वाहिश को बड़ा समझता है। कितने ही दिन में ऐसे मौके आते हैं ना जिसमें हम चूज कर सकते हैं कि हम अल्लाह ताला की इताअत करें और उसकी इबादत करें, या अपनी ख्वाहिश की पैरवी करें, अपने नफ्स की इताअत करें और उसकी इबादत करें। यहां से हमें एक बात और बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाती है कि जब आप इबादत करने का कहते हैं, जब आप माबूद बनाने का कहते हैं, इलाह बनाने का कहते हैं, तो कौन है? आपने कहीं देखा दुनिया के अंदर इलाह बनाना कि जी फलाने अपना इलाह बनाया हुआ है अपनी ख्वाहिश को, तो वो ख्वाहिश कहीं कोई बुत है जो खड़ा हुआ है जिसके आगे लोग सजदा कर रहे हैं? नहीं, वो ख्वाहिश कहीं आपने किसी को सजदे करते भी नहीं देखा, नमाजें पढ़ते हुए ख्वाहिश के लिए नहीं देखा। फिर क्या चीज होती है ये माबूद बनाना, इलाह बनाना? उसका इलाह क्या है? उसका इलाह है उसकी ख्वाहिश। ला इलाह इल्ला हुआ इल्ला हवा, कि वो कहता है कि मेरा नहीं कोई इलाह मगर मेरी हवा ही, मेरी नफसानी ख्वाहिश ही मेरा खुदा है। वो मुंह से जाए इल्लल्लाह कहता रहे, लेकिन असल में वो अपनी ख्वाहिश को माबूद बनाए हुए। कैसे? हमें यहां से पता चला कि इबादत असल में इताअत का नाम है, इसलिए क्योंकि वो खड़े होके किसी की पूजा नहीं कर रहा, वो इताअत करता है, उसको कहा गया ये उसका इलाह है। यानी इसका मतलब क्या है कि जो इंसान जिसकी इताअत इख्तियार करता है अल्लाह को छोड़ के, उसके मुकाबले में वो ही उसका इलाह होता है। समझ आई बात? ये वाली आयत बहुत बहुत ज्यादा समझने वाली है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मुझे आप लोगों की बहुत तवज्जो चाहिए। अपने सब काम छोड़ के पूरे फोकस्ड होके मेरी इस बात को समझे कि यानी हलाल हराम, जायज नाजायज, क्या गुनाह है नेकी है, इसकी उसको कोई परवाह नहीं। उसको ये नहीं परवाह कि किस चीज को अल्लाह ताला ने हराम किया, वो बस ये क्या देखता है कि मेरे नफ्स की क्या चाहत है, मेरा दिल क्या चाहता है, मेरी ख्वाहिश क्या है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस जमीन के ऊपर जितने माबूदों की इबादत की जाती है उनमें से सबसे बुरा अल्लाह ताला के नजदीक ये ख्वाहिश नफसानी है, ये माबूद है सबसे बुरा माबूद। यानी कोई लोग बुतों की, एक तो शिर्क वैसे ही बुरा है ना, शिर्क वैसे ही सबसे बड़ा गुनाह, शिर्क वैसे ही कितनी कि मतलब कितना बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा। उसके अंदर भी वर्स्ट शिर्क क्या है? ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करना। और ख्वाहिश नफ्स की पैरवी इंसान को यानी सबसे ज्यादा बुरा इंसान बना देती है, इसलिए कि ये वर्स माबूद है, इससे इंसान असफल उस्साफिलीन बन जाता है, नीचों से भी नीचा, नीचों से भी नीचा। हदीस में आता है तीन चीजें हलाक कर देने वाली हैं, एक ख्वाहिश नफ्स की पैरवी जो इंसान करता है, दूसरी अपने आप पे खुश होना यानी अजब, यानी अपने आप को बहुत पसंद, अपने आप को बस बड़ी चीज समझना, अपने आप से ही खुश होते रहना। नंबर थ्री दिल की तंगी, बुखल, शह। तो यानी ख्वाहिशात वो हैं जो एक माबूत बन जाती हैं। वैसे तो ख्वाहिश इंसान करता है, कोई मसला नहीं है, किसी को ख्वाहिश हुई इच्छा चलो भाई ये चीज खा लेते, तो ख्वाहिश पूरी करना कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक बंदा ख्वाहिश के अंदर इस तरह से आगे बढ़ जाता है, हद क्रॉस कर देता है कि वो ख्वाहिश पूरी करने के लिए इस चीज की परवाह नहीं करता कि अल्लाह ताला का क्या हुक्म है। ख्वाहिश जहां से भी पूरी होती हो, अब देखें ख्वाहिशात क्या हो सकती है, ये ख्वाहिश ये हो सकती है कि मेरी तारीफ की जाए, मुझे अप्रिसिएशन मिले, मुझे वाहवाह मिले, ठीक है, उसके लिए इंसान कुछ भी कर लेता है, चाहे दीन की तरफ आना पड़े, चाहे हिजाब लेना पड़े, देखो लोग मुझे नेक समझेंगे ना, उसी से तारीफें हो रही हैं तो बस वही ठीक है। ख्वाहिश हो सकती है एक इंसान की कि मैं इन हूं लोगों के अंदर, ये बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है ना लोगों की, कि मैं बस इन हूं। अब इस इन होने के लिए वो क्या क्या करता है, ये अब उसकी ख्वाहिश है ना, अब उसके लिए देखें वो कितने गुनाह करेगा। कहते हैं हर गुनाह की जो बेस है या जो रूट है ना वो ख्वाहिश नफ्स की पैरवी है, तो इंसान उसमें अंधा हो जाता है, उसको फिर फिक्र नहीं रहती कि मेरा अल्लाह किस चीज से नाराज हो रहा है या किससे राजी होगा।
वॉट ही केयर्स इज कि मेरी ख्वाहिश बस पूरी होनी चाहिए। अब उसकी ख्वाहिश है कि मैं इन हूं, तो अब कैसे इन हो सकती हूं? मैं ऐसा पहनूं कि जो बिल्कुल नंग धड़ंग हो, जिसके अंदर जो टाइट लिबास हो, जिस पे मॉडर्निज्म का ठप्पा लग जाए बस मेरे ऊपर। फिर मैं वो सारे काम करूं, कभी क्रिसमस कर रही हूं तो कभी मैं वैलेंटाइन कर रही हूं तो कभी मैं कुछ कर रही हूं, ताकि मैं बस इन रहूं। मैं अब इस तरह ही एक आदमी है, उसकी ख्वाहिश है कि मैं बस, मेरे पास पैसा बहुत हो। अब वो पैसा कहाँ से आता है? चाहे शराब बेचने से आता है, ड्रग्स बेचने से आता है, लॉटरी करने से आता है, कुछ भी। कोई देखें, ये चीजें इलीगल तो है नहीं, दुनिया के कानून के मुताबिक तो इलीगल नहीं है। जहां पे शराब बेची जाए, लॉटरी बेची जाए, वो तो बुराई नहीं समझी जाती। लेकिन उसको ये परवाह नहीं कि अल्लाह का कानून क्या कहता है। वो उसको ये है कि बस इस तरह से मैंने पैसा बनाना। ये है हवा। अब इंसान जब हवा की पैरवी करता है ना, तो फिर नफ्स उसको चलाता है। नफ्स कहता है मेरा ये दिल करता है, और वो उस तरफ चल पड़ता है। आज नफ्स का कुछ दिल कर रहा है, कल कुछ दिल। और ये अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, इसके ऊपर तो पूरी पूरी किताबें लिखी हैं। ये एक आयत के ऊपर पूरा लेक्चर हो सकता है कि ये जो चीज है ना, ये एक ख्वाहिश आप पूरी करेंगे ना तो दूसरी सर उठाएगी, दूसरी पूरी करेंगे तो तीसरी सर उठाएगी, तीसरी पूरी चौथी सर। यानी ये ऐसा एक विशेष साइकिल है, एक दलदल है जिसमें इंसान पर धंसता चला जाता है। इसकी मिसाल उलमा ऐसे देते हैं जैसे एक खारिश का मरीज होता है ना। अच्छा, जब किसी को खारिश लग जाती है तो आप क्या उसको कहते हैं? खारिश ना करो, और होगी। वरना आप एक जगह शुरू करते हुए दूसरी जगह और ज्यादा होने लगती, फिर और ज्यादा होने लगती, फिर वो फैलती जाती है। ये इसी तरह फिर इंसान को उसका नफ्स ड्राइव करता है, बजाय वो अपने नफ्स को चलाए, हवा उसको चलाती है। इस तरह ही देखें जो होमोसेक्सुअलिटी है, वो भी क्या है? एक ख्वाहिश नफ्सी है ना। इसको लीगल क्यों किया गया? क्योंकि उनका दिल चाहता है कि वो अब इस हद तक जाएं। जीना भी क्या है? ख्वाहिश नफ्सी है ना। उसका जिसके साथ दिल किया, उसने उसके साथ ताल्लुक कायम किया। ख्वाहिश नफ्स ही है ना। कोई उठ के जाके क्लब्स में नाचना शुरू हो गया, शराब पीना शुरू हो गया, नंगे लिबास पहनना शुरू, ख्वाहिश की तकमील है। मेरा दिल करता है, मेरा दिल करता है कि मैं ये हूं, तो यानी वो ख्वाहिश का बंदा है। जो दिल उसके का करता है वही करना शुरू हो जाता है। तो इलाह वही होता है जिसकी इंसान इताअत करता है। जैसे अब देखो, इसको मैं आपको आसान लफ्जों में करूं, जैसे आप कहते हैं ना पूजा करना, तो पूजा करनी क्या होती है? एक एक बंदा अपनी शायरी में कहता है कि मैं अपनी महबूब की, वो कहता है मैं तेरी पूजा करता हूं। यानी इतनी शदीद मोहब्बत से करता हूं कि जो तू कहे करने को तैयार हो, तू कहे के जान दे दो तो जान भी देने को तैयार हूं। सुना होगा ना आपने ये शायरियों में, जो जो गाने हैं इनके अंदर वो यही कहते हैं, तू मेरा रब है, तू, मैं तेरी पूजा करता हूं। ये तो आम ही कहते हैं वो। यानी मैं तुझसे इतनी मोहब्बत करता हूं, तेरी पूजा करता हूं, यानी जो भी तू कहे मैं तेरी मोहब्बत में वो करने को तैयार हूं। तू, वो कहते तू मेरा खुदा है। इसी तरह उनको इतनी समझ उनको भी आई हुई है कि खुदा होना क्या होता है। तो एक मुसलमान के लिए ये मकाम सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है कि ए अल्लाह, मैं तुझसे इतनी मोहब्बत करता हूं, इतनी मोहब्बत करता हूं कि तू जो कहे, अनकंडीशनल लव। ये नहीं कि तू मुझे कुछ देगा तो मैं फिर तेरी इताअत करूं, ये नहीं कि तू मेरे सारे काम तू सही करेगा तो फिर मैं तेरे भी आगे झुकूंगा और तेरी भी बात मानूंगा। और हाँ, तूने मेरे साथ ये कर दिया, अब तो नहीं मैंने तेरी बात माननी, अब तो मैंने तेरा आगे झुकना भी नहीं। मैं किस बात की नमाज पढ़ूं? अब मैं किस बात करूं? हाँ, मैं हमारे फलाने को क्यों फौत कर दिया, हमारा हमारा फलान नुकसान क्यों हो गया, मेरी जिंदगी में ये दुख क्यों आया, तो इसलिए अब नहीं मैंने तेरी पूजा करनी। नहीं, ये इबादत नहीं है। इबादत है अनकंडीशनल लव, कोई शर्त नहीं है उसके साथ। ए अल्लाह, मैं तुझसे इतनी मोहब्बत करता हूं कि मैं तेरे लिए अपनी जान देने को भी तैयार हूं, तू जो कहे वो करने को तैयार हूं, हत्ता कि जान भी कोई चीज नहीं है। ये है इबादत, ये है इलाह बनाना। हमारा इलाह कौन है? किसको हमने इलाह बनाया हुआ है? किसकी हम पूजा करते हैं? कौन है जो हमें कहता है कि करो ये, तो हम करने को तैयार हो जाते हैं। वो कोई और नहीं होता, अक्सर वो हमारा अपना नफ्स होता है। सिर्फ हम तो किसी की भी बात मानने को तैयार, ना हस्बैंड की, ना बच्चों की, ना, ये सारे सेकेंडरी हो जाते हैं जब मेरा अपना मन ना माने। जब अपना मन नहीं मानता ना, तो हस्बैंड की भी नहीं सुनते। अपना मन नहीं मानता तो माँ बाप की क्या बात है, बच्चों की क्या बात है। नहीं, मेरा नहीं दिल करता, मैं नहीं ऐसे कर सकती, तब तो हमें फौरन आ जाता है। वैसे हम कहते रहते नहीं बच्चे मजबूर करते हैं, असल में वो बच्चे नहीं मजबूर कर रहे होते, वो मेरी भी ख्वाहिश होती है, वो मेरा नफ्स कह रहा होता है, वो हस्बैंड नहीं कह रहा होता, वो मेरा अपना दिल कर रहा होता है। तो असल हम सुनते अपने दिल की ही है, बहाने हमारे दूसरे होते हैं। तो आप देखें कि इसको अल्लाह ताला ने कुराने पाक में इतनी बुरी एक मिसाल के साथ बताया है हमें कि ख्वाहिशे नफ्स करने वाला, सूरह आराफ में अल्लाह ताला ने बताया कि वो ऐसे है कि जैसे अल्लाह ताला ने एक बंदे को इल्म दिया और फिर वो ख्वाहिशे नफ्स के पीछे पड़ गया। वो ऐसे है जैसे कुत्ता होता है, कुत्ते की आप देखें हर वक्त जुबान लटकी रहती है, यानी उसकी ख्वाहिशात कभी खत्म नहीं होती, उसकी हिरस कभी खत्म ही नहीं होगी, एक के बाद एक, एक के बाद एक। फिर अल्लाह ताला फरमाता है ना, व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बी व नहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत ही अल मावा। जो अल्लाह ताला के सामने खड़े होने से डरा और उसने अपने नफ्स की ख्वाहिश को कंट्रोल किया ना, उसके लिए जन्नत है, उसके लिए है जन्नत जी। यानी इस ख्वाहिश को कंट्रोल करना, ये नहीं मेरा दिल जिधर कहे मैं उधर चल पड़ू। दिल ने आज कहा कि शादी पे जाना है, क्या जरूरत है ये हिजाब वगैरह की, और इस तरह उतारो इसको, इससे तो बाल ही नजर नहीं आएंगे। ख्वाहिश क्या है? लोगों में पजीराई। ख्वाहिश क्या है? लोग मेरी तारीफें करें। ख्वाहिश क्या है? कि लोगों में मैं सबसे हसीन नजर आऊं। अब उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े, जो भी करना पड़े, चाहे किसी से हंस हंस के बातें करनी पड़े, चाहे अपने बाल खोल के जाना पड़े, चाहे वहां पे नाचना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, ये ख्वाहिश नफ्स होती है जो इंसान को कहीं का नहीं रहने देती। और आप देखें दीन में भी बाज दफा नेकी के कामों में भी हम फिर ख्वाहिश नफ्स पे ही चलते हैं। कैसे? कि जो नफ्स को पसंद आता है वो तो कर लिया, उसमें भी पिक एंड चूज क्यों करते हैं? क्योंकि जो दिल करता है करने का, ये इसमें मुझे वैसे बड़ा मजा आता है। किसी ने कहा कि हज पे जाएं आपको बड़ा ही मजा आएगा, बहुत फन है वहां पे, ये फन करने जा रहे हैं हम। अरे हम काम भी वो वाले करने हैं कि जिसमें मेरा दिल खुश हो, मुझे एंटरटेनमेंट मिले, जरा हंसी मजाक भी हो जाए, थोड़ा सा इस तरह भी हो जाए, शुगल मेला हो जाए, बस कोई मुशक्कत वगैरह ना उठानी पड़े। देखे मुश्किल काम नहीं हम कर सकते, मेहनत नहीं हमसे होती, नहीं इस रास्ते में नहीं कोई। हाँ कुछ चीज छोड़ने को ना कहे हमें, इब्ने अब्बास की तफसीर ऐसे करते हैं कि जो उसको पसंद आता है वो बस कर लेता है। यानी दीन के मामले में भी अपने आप को दीनदार हम कहलाते हैं ना, देखें आप के क्या हम पिक एंड चूज तो नहीं कर रहे उन चीजों को, जो मुझे पसंद आती है वो कर ली, जो नहीं पसंद आई थोड़ी भी मुश्किल लगी, थोड़ा भी जरा अपने आप को उसके लिए कुछ करना, अपनी ख्वाहिश को तोड़ना पड़ा, थोड़ा कुछ कुछ अपने ऊपर जबर करना पड़ा, तो वो नहीं मैं कर सकती। तो सबसे आगे उनके कौन होता है या सबसे ऊपर कौन होता है ये बताएं? अपना आप ना, अपना नफ्स, अल्लाह की बात नहीं होती सबसे ऊपर। तो इलाह पे कौन हुआ जो मेरी जिंदगी में सबसे ऊपर है, जिसके आगे मैं किसी की नहीं सुनती? वो मेरा अपना मन है या अल्लाह ताला है? मनमानियां ही करनी है मैंने, तो मैंने तो उसको ही फिर खुदा बनाया हुआ अपना। मेरा दिल, मेरा दिल जो करता है मैं वो करती हूं, चाहे तकवा क्या है या नेकी क्या है या अल्लाह का हुक्म क्या है, मेरा तकवा भी मुझे नहीं रोकता। वैसे मैं अपने आप को बड़ी मुत्तकी कहती हूँ। तो दीन में भी पिक एंड चूज करना, जो पसंद है वो कर लिया, जो नहीं पसंद आया, जो मुश्किल लगा, जो अपने ऊपर जरा थोड़ा जबर करना पड़ा, वो छोड़ दिया। जैसे मैंने आपको बताया कि सूरह आराफ 175 में ना अल्लाह ताला ने उस बंदे का वाकया जो बयान किया है, तो उसके पास दीन का इल्म था, मगर वो उसको छोड़ के दुनिया के पीछे पड़ गया। वो बहके हुए लोगों में से हो गया, इसीलिए अल्लाह ताला ने उसकी मिसाल कुत्ते की दी है। ये नहीं होता कि दीन का इल्म नहीं है तो कोई ऐसे करता है, इसका इल्म होने के बावजूद भी लोग करते हैं। कुत्ते की मिसाल दी है कि हर वक्त वो बस जुबान लटकाए हुए, उसकी ख्वाहिशात पूरी होती ही नहीं। तो जो भी इल्म पा के भी ख्वाहिशात का बंदा बन जाए उसका यही हाल है। अब ये देखें यहां पर भी यही कहा गया, वह अदल्लाहुल्लाहु आला इल्म, इसका एक माना क्या है, और भटका दिया उसको अल्लाह ने इल्म के बावजूद, अल्लाह ताला के इल्म में था और उसने उसको भटका दिया। अल्लाह के इल्म में था कि वो कैसा बंदा है, अल्लाह ने अपने इल्म की बिना पे ये किया। नंबर टू माना जो ज्यादा यहाँ पे मुफसरीन ने कहा है कि ज्यादा राजी है, वो ये कि बावजूद इसके कि उसके पास इल्म था फिर भी वो अपनी ख्वाहिश का बंदा बन गया। उसको पता था, ऐसा नहीं कि एक तो बंदा होता है ना उसको बेचारे को पता ही नहीं है, मगर एक बंदा है उसको पता है। नो आई डोंट केयर, वही का कोई हुक्म आ भी गया है उसको इग्नोर कर दिया। मैं ना मान लू पता भी है, जानबूझ के वही काम करते रहना, जैसे बिल्कुल सुना ही नहीं कभी। और हमने सुनी अनसुनी करने का कितना पढ़ा है ना, कि जो लोग सुनी अनसुनी करते हैं, जो लोग इस चीज की परवाह ही नहीं करते अल्लाह ताला का हुक्म क्या है, सुन के भी ऐसे हो जाते हैं कि जैसे सुना ही नहीं कभी उन्होंने, और इसरार करते हैं उसके ऊपर। बशीर हूँ भी आदाब अलीम, अल्लाह ताला ने फरमाया उसको खुशखबरी दो अजाब अलीम की। इसी सूरत में हमने पढ़ा ना, उनके लिए वैल है, आयत 8 में हम पढ़ चुके हैं ये। उनके ऊपर अल्लाह की आयात भी पड़ जाए, क्योंकि करना उन्होंने वही है ना। अब क्या होता क्या, हम थोड़ा सा कोई नेकी का कर लेते हैं फिर उसी से अपने आप को बहलावे देते रहते, देखो मैं ये नेकी भी तो करती हूँ ना, तो क्या हुआ अगर मैंने ये कर लिया, क्या अब हम कभी खुश ही ना हो? आपका मतलब है कि कभी हमें खुश, इस्लाम को खुशी से तो नहीं रोकता? अब इतने भी एक्सट्रीम होने की क्या जरूरत है, अब इतने भी, अब हमारा दिल नहीं क्या करता, अब हम क्या अपनी दिल की ही ना माने? हाँ दिल की नहीं माने जहां अल्लाह का हुक्म आ गया। तो वो चीजें हमें देखने की जरूरत है, कितनी चीजें हम पढ़ चुके हैं अभी तक कुरान करीम में जिनके ऊपर अभी तक दिल आता ही नहीं। नहीं जी मुझे टाइम चाहिए। टाइम चाहिए किस चीज का, किस चीज का टाइम चाहिए, दिल को मनाने का? तो फिर खुदा तो यही है ना, जब मानेगा तो तब करेंगे। माशाल्लाह फिर तो खुदा उसी को बनाया हुआ जी, जो आपकी खुदा साहब जब मान जाएंगे, जब वो उनकी थोड़ी मर्जी होगी तो आप इनको देख के चलते हैं ना, फिर इनको देखेंगे जी किस पे राजी होते हैं आप। आप राजी हो गए तो हमने कर लिया, आप ना कहीं आपको कोई नाराजगी ना हो जाए, आपकी नाराजगी नहीं हम बर्दाश्त कर सकते। तो इनको इसको मनाने में लगे में टाइम लगेगा ना, इसको मनाने में। अस्तग़फिरुल्लाह, इतनी ये डरा देने वाली आयत है कि मुझे तो लग रहा था कि अल्लाह हू अकबर मेरा ईमान है भी कि नहीं। अल्लाह मुझे तो लगता है कि ख्वाहिश नफ्स के मैं तो बंदी बन चुकी हूं, ख्वाहिश परस्ती, ख्वाहिश जिधर कहती है, अपनी मर्जी को आगे रखना, दिल की मर्जी पे चलना, किस चीज की परवाह ना करना, बस मेरी ख्वाहिश पूरी हो। तो जो बंदा अपनी ख्वाहिश का बंदा है तो उसने तो बदतरीन माबूद बना लिया ना, बजाय इसके कि हम अपने नफ्स को अपने पीछे लगाते, इसके ऊपर जबर करते और इसको टेम करते। जैसे ना रोजा, रोजा रखना क्या होता है, अपनी ख्वाहिश को अपने नफ्स को, वो कहते हैं ना अपने नफ्स की जो बागें हैं समझिए, ऐसे नफ्स को उलमा बताते हैं जैसे मूज और घोड़ा है, वो तो कंट्रोल में आ ही नहीं रहा, वैसे मतलब वाइल्ड हो रहा है, तो उसकी बागें पकड़ के खींचना, कहते रोजा ये कराता है। तो फिर लेकिन हम उसको उसके हवाले खुद को कर देते हैं, तो वो वाइल्ड बीस बीस्ट है जो हमें खा लेगा फिर। तो इसके लिए एक्सक्यूज मत दें, जब नफ्स को फॉलो करते हैं तो एक्सक्यूज अपना देना बंद कर दें। वल्ला ये तो नहीं कहता, देखो जवानी मिली है तो फिर एक ही दफा मिली है ना, जीना भी तो है ना, हमने जिंदगी एक ही दफा मिली है, दीन को एक्सट्रीम पे चलने को तो नहीं कहता। बस अल्लाह ताला ने तुम्हें ऐसा ही पैदा किया। देखें अभी वो क्या कह रहे हैं, जो होमोसेक्सुअल्स हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ऐसा ही अल्लाह ने हमें पैदा किया। नहीं, वो भी इल्जाम अल्लाह ताला पे, जैसे शैतान ने कहा था कि अल्लाह तूने ही मुझे गुमराह किया ना, तो वो भी इल्जाम अल्लाह पे ही लगा दिया। हालांकि अपनी नफ्स की ख्वाहिश है, अब औरतों से दिल भर गया तो अब मर्दों की तरफ ख्वाहिश हो गई। औरतें कहने लगी हमें तो अब मर्दों की जरूरत ही नहीं, हम तो खुद ही काफी हैं, हमें क्या मर्दों की जरूरत है। हम तो किसी ने सवाल पूछा कि औरतें सवाल कर रही हैं कि अब मर्दों की जरूरत है क्या, बताएं हमें, हम सब कुछ खुद ही कर लेते हैं। ये क्या ख्वाहिश है नफ्स इंसान की, वो एक मुंहजोर घोड़े की तरह है जो कहीं काबू में आ ही नहीं रहा। उसने बस वो करना है जो उसका दिल करता है, बस वो जैसे रहना चाहता है, जो है ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, ये क्या है, ख्वाहिश नफ्सी तो है कि बस मैं अपनी मर्जियां करूं जी, मुझे कोई रोक टोक ही ना हो। ये अगली फॉलोइंग आयात इसी के ऊपर है ना, जब इंसान का ये तरीका कार हो जाता है ना, तो फिर उसके मुंह से क्या निकलता है, उसको पाबंदियां अच्छी लगेंगी क्या, उसको रिस्ट्रिक्टेड लाइफ अच्छी लगेगी क्या, उसको अल्लाह के हुक्म अच्छे लगेंगे क्या, उसको ये अच्छा लगेगा कि मुझे एक दिन हिसाब किताब देना जी, ये बातें ना किया करो ऐसी डरा देने वाली। क्यों? इसलिए कि ख्वाहिशें नफ्स के रास्ते में हायल होती हैं। हम फिर ख्वाहिशें नफ्स कैसे पूरा करेंगे अगर आप हमें हर वक्त ये याद दिलाते रहेंगे हिसाब देना, एक जन्नत एक जहन्नुम है, अल्लाह के आगे खड़े होना है, इस तरह की बातें ना किया करें, फिर ये बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैंने पूरा वो करना है जो मेरा नफ्स कहता है, और ये चीजें मेरे नफ्स के रास्ते में हायल होती, मेरी मर्जी फिर करना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो कुरान करीम में जहां हवा की बात आई है ना, वहां पे इसकी मुजम्मत ही की गई है, कहीं इसको जो है ना मतलब अच्छा, इसको कहीं अप्रिशिएट नहीं किया गया। जहन्नुम को ख्वाहिशात से ढांप दिया गया था, जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब देखने गए, उन्होंने फरमाया ए मेरे रब, तेरी इज्जत की कसम है इससे तो कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि हर कोई अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारे मुतल्लिक जिस चीज का डर है वो गुमराहकुन ख्वाहिशात है, इसका सबसे ज्यादा अंदेशा है, जिनका ताल्लुक पेट और शर्मगाह से। और आज देखें जिना कितना आम है, शर्मगाह की जो जितने भी गुना, चलो जो जिना से बच गया उसने कहा आंखों का जिना ही कर लूं, हाथों का जिना कर लूं, कानों का जिना कर लूं, ऐसा है नहीं, आपको पहले भी बताया था हदीस में आंख भी जिना करती कान भी, शर्मगाह तो उसकी तस्दीक करती है, एंड में उसका काम आता है, उससे पहले जो सारी चीजें, जो ऐसे सीन्स देखना, जो ऐसी बातें सुनना जो शहवत को इंस्टिगेट करें और ज्यादा भड़काएं, लस्ट को भड़काएं, ऐसे ड्रामे ऐसी फिल्में ऐसे गाने वो क्या करते हैं, उस गाने के बाद जिसके कोई नहीं भी होगा वो भी एक ख्याली दुनिया के अंदर चला जाएगा, मेरा भी कोई महबूब होता जिसको मैं ये कहता और ये कहता। और पेट के ये भी ख्वाहिशात नफसानी है ना, यानी पेट का ईंधन, ये किसको कहते हैं ना कि भई ये कैसे भरे, पैसा लाओ पैसा, और फिर फरमाया और अपनी मर्जी पर चलने की गुमराही का भी अंदेशा है, अपनी मर्जियां करने की। तो जो ख्वाहिशे नफ्स पे चलता है उसके नसीब में सिवाय जिल्लत के और कुछ नहीं, क्योंकि ये ख्वाहिश कहीं रुकती तो है ही नहीं ना। आप इस, जैसे मैंने आपको ख्वाहिश की मिसाल दी ना, आप एक शुरू करेंगे ना, आप देखेंगे आगे से आगे ये नफ्स और डिमांड्स लाता ही जाएगा, ये हटेगा नहीं, ये उसकी तरह है जो बच्चा स्पॉइल्ड हो जाता है ना, फिर वो जिद करना शुरू हो जाता है। नहीं, अब जितना उसको खुली छूट देते जाओगे, अब वो कहेगा नहीं ये भी करो, अब ये भी मेरी मानो, ये भी मेरी मानो, और जितना आप उसको कंट्रोल करके रखेंगे उतना फिर ये कंट्रोल होने का आदी हो जाएगा, ये जिद नहीं फिर करेगा, वरना तो आपको चैन से ही नहीं बैठने देगा, मेरी जिद ही पूरी नहीं हो रही, रात को नींद ही नहीं आ रही, मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो ऐसे करना है, मुझे तो ये करना है, जब तक वो काम करा नहीं लेगा नफ्स उस वक्त तक बैठेगा नहीं। इसकी भी एक साइकोलॉजी है, जितना इसको आप कंट्रोल करके रखेंगे ना, फिर इसे इसका आदी हो जाएगा कंट्रोल का, फिर ये आपको तंग नहीं करेगा उस तरह, ख्वाहिश आएगी लेकिन आपके लिए ईजी हो जाएगा उसको कंट्रोल करना। और क्या वजह होती है, क्यों इंसान एक ख्वाहिशात नफ्स का बंदा बन जाता है, किस तरीकों से बनता है, एक उसके अंदर तो बहुत बड़ा एक वजह इंसान की अपनी कंपनी होती है, ऐसे लोग जिनका उठता बैठता है वो ही उसको ख्वाहिशात के बंदर बना देते हैं, क्योंकि वो खुद भी ख्वाहिशात पे चलने वाले होते हैं। अब वो कंफ्यूज कर देते हैं, उसके पास इल्म हो भी ना हो, उसको नहीं, तुम क्या कहते हो, जैसे मैंने अभी कहा, देखें दीन और दुनिया साथ लेके चलना होता है ना, दुनिया भी तो साथ लेके चलनी है। वो दुनिया क्या होती है, वो ख्वाहिश नफ्स होती है। एक मोमिन तो कहेगा कि मैंने दीन को लेके चलना है, दुनिया जाए जहां मर्जी, जो मुझे मर्जी कहती रहे, दुनिया चाहे मेरी खराब हो जाए, मेरा दीन ना खराब हो। नहीं जी, हमने तो उसको भी लेके चलना है, यानी अपनी भी हमने मनमानी करनी है, दीन भी साथ साथ चलाना है। ये मतलब होता है, और क्या मतलब है? वरना दीन आपको ये थोड़ी कहता है कि आप जॉब ना करो, दीन आपको ये नहीं कहता आप शादी ना करो, दीन आपको ये नहीं कहता आप बच्चे ना पैदा करो, दीन आपको ये नहीं कहता कि आप अपने हकूक अदा ना करो, अपनी औलाद को भी देखो, शौहर के भी हकूक अदा करो, हमसायों के भी करो, रिश्तेदारों को, सब कहता है। क्या चीज से रोका दीन ने? लेकिन जब हम कह रहे थे ना दुनिया, दुनिया को भी साथ लेके चलना, असल में वो क्या होता है, वो हमारी अपनी ख्वाहिश नफ्स होती है, कि जिधर हमारी मर्जियां, हमने अपनी भी तो करनी है ना, सिंपल एज दैट। वरना क्या दीन ने रोका है किसको, इसी दुनिया में रहने का कहा है, ये नहीं कहा कि मर ही जाओ। और खुश खुश होने से दीन तो नहीं रोकता, नहीं जी हमने अपनी भी तो खुशी करनी है। अपनी खुशी का मतलब क्या होता है, ये अपनी मनमानियां करनी। तो सल्फ सालेहीन जो थे ना, ऐसे लोगों की मजलिस में बैठने को भी ना पसंद करते थे जो ख्वाहिश नफ्स के बंदे हैं, क्योंकि उनका रंग चढ़ जाएगा, क्योंकि उनके पीछे हम भी चल पड़ेंगे, इसलिए वो करते थे। अब ये बात है कि एक तो ये इंसान करे कि ऐसे लोगों की कंपनी छोड़ दे, सालेहीन का साथ इख्तियार करे, और दूसरा इंसान इल्म के रास्ते पे आए, कुरान करीम से जुड़े। और इसके अंदर मैं एक चीज जरूर कहूंगी, देखें एक होता है ना, आज ही पढ़ रहे हम, लिसनर हैं हम, ये हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, या कुछ तो कहेंगे कि टाइम ही नहीं है। वो भी क्यों है, क्योंकि जहां पे ख्वाहिशात पूरी होती है वहां पे तो बहुत टाइम है, इसके लिए ना ख्वाहिश है ना इसकी तरफ आने का कोई इरादा है, ठीक है ना। एक है जो ख्वाहिशात हैं सारी वो पूरी हो रही हैं, शॉपिंग भी हो रही है, घर के भी सब चीजें चल रही हैं, डेकोरेट भी हो रहा है घर, शादी ब्याह का मौका आ जाए तो हद ही कर देते हैं, रातों तक बैठे हुए डेकोरेशनें हो रही हैं, रातों तक बैठे हुए गिफ्ट रैपिंग हो रही है, रातों तक बैठे हुए गाना बजाना चल रहा है, गपशप हो रही, सब कुछ हो रहा है। हाँ दीन के मामले में कहते टाइम नहीं, क्यों नहीं है टाइम? आप जॉब भी करते हैं, आप घर के भी काम करते हैं, आप बाहर दावतों पे भी जाते हैं, पार्टिंग भी करते हैं, इसके लिए टाइम नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये ख्वाहिश नहीं है, ख्वाहिशात के बंदे हैं ना, तो ख्वाहिश कहीं और है। ख्वाहिश नफ्स जो है ना, उसको क्या चीज फुलाती है, क्या चीज उसको ज्यादा वो करती है, खाना पीना सोना ज्यादा, इंटरमिंगलिंग, लोगों के साथ बहुत मिलना जुलना, ये नफ्स को फुलाता है। जब कोई आपकी तारीफ करता है उससे भी नफ्स फूलता है, ज्यादा बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा। तो ये चीजें नफ्स को ज्यादा यानी तंदुरुस्त कर लेती हैं, समझ लें, इसको वीक करना है, इसको कमजोर करना है, ताकि ये हम पे हावी ना हो। तो जब इंसान कहता है कि मैंने बंधना नहीं है जी, मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं हो सकता जी, मैं रजिस्टर नहीं कर सकता, मैं स्टूडेंट नहीं बन सकती, मैं आपको कहूंगी ख्वाहिश नफ्स को अगर आपने कंट्रोल करना है ना, अपने आप को कहीं बांध लें। बांधने से क्या होगा, अब तो ये करना ही करना। अब देखें टेस्ट आने का, आप लोग वैसे बहुत बुरा समझते हैं टेस्ट को, या इसके कहते हैं पता नहीं टेस्ट होना ही नहीं चाहिए, लेकिन क्या है, देखो ये आपको बांध देता है। अब आपको खोलना ही खोलना है कुरान, नहीं भी दिल कर रहा तो तब भी खोलना है, नहीं भी पढ़ना चाह रहे तब भी पढ़ना है, नहीं भी वक्त निकालना चाह रहे तब भी वक्त निकालते हैं। उस बांधने से ये हुआ ना, अगर बंधे ना होते तो परवाह भी ना करते, ठीक है। तो खुद को बांध लें, कहीं ऐसी क्लासेस में बांध लें, ऐसी जगहों पे बांध लें कि यहाँ पे मैंने कोई ड्यूटी ले ली है, यहाँ पे मैंने कोई काम कर पढ़ने का मैंने इरादा कर लिया, रजिस्टर कर लिया, अब मुझे जबरदस्ती करना ही पड़ेगा। तो अब नफ्स माने ना माने, अब उसको जबरदस्ती इस तरफ लाना ही पड़ेगा, ये अच्छा नहीं हो गया। देखें आपके लिए क्या चीज अच्छी है, ये ना देखेंगे मेरे नफ्स को जी किस चीज में आराम मिलता है, किस चीज में वो उसको मजा आता है, नहीं बस तुझे मैं यहां पे बांधूंगी, मैं तेरे से यहां पे काम लूंगी। और कुरान इसलिए इसमें बेहतरीन है क्योंकि कुरान में वैसे भी शिफा है, और ये जो नफ्सानी ख्वाहिशात को इलाज बनाना है ये बीमारी है। और सबसे बड़ा जिहाद क्या है, अपने नफ्स के साथ जिहाद करना। इसके साथ जिहाद करना, इसको जेर कर देना, इसको नीचा कर देना। इसीलिए आप देखते हैं कि कई सूफिया का भी ये रहा है कि वो ऐसी चीजें जो नफ्स कहता है ये मैंने खानी है, ये मुझे चाहिए, उस वक्त उसको वो नहीं देते थे कि तुझे तो मैं हराऊंगा। क्या वो क्या वजह थी? बार दफा वो फिर खैर बहुत ही एग्जेजरेशन कर देते थे कि बिल्कुल ही हलाल चीज से भी अपने आप को महरूम रख लेना और उसको भी अपने ऊपर हराम कर लेना, ऐसी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हर ख्वाहिश जो उठे, अब रात के 11 बजे मुझे जी ख्वाहिश उठी जी फलां जगह से मैंने खाना खाना, चलो जी चाबी पकड़ी चलो जी। कभी तो अपने आप को कहें कि नहीं, डिसिप्लिन लाई, नहीं मैंने सुबह उठना है, मुझे सुबह काम है, मुझे फजर है, मेरी तहज्जुद है, वो खराब हो जाएगी। मैं नहीं ये नफ्स की बात सुन सकती, दिल कर रहा है दिल के पीछे अब मैं चल पड़ू। तो कभी अब अपने आप के अंदर तहिया कर लें कि ऐसा जब मेरा दिल कहेगा ना तो मैंने फिर उस वक्त उसको कंट्रोल कर लेना, क्योंकि इसको ना पाबंदियां अच्छी नहीं लगती। ये चाहता है कि बस मुझे खुला छोड़ दो। अगर शादी करके किसी को सही लगता है तो ठीक है वो करे, अगर शादी अच्छी नहीं लगती ना, ये भी क्या पाबंदी है कि एक के साथ ही रह जाए। तो चलो जी फिर डेटिंग कल्चर बस इसके साथ, या लिविंग टुगेदर फलां के साथ रह लें फलां, चल के छोड़ देना फिर उसको, फिर देखिए नाम से नहीं इस तरह बंधी हुई जिंदगी गुजारी जाती। समझ आई बात आपको? तो ये कहाँ तक ले जाता है, ये कोई हटता नहीं है फिर तो। अपने अंदर समझे, एक हमारा दुश्मन बाहर है, एक अपने अंदर बैठा हुआ है, और ये बहुत मुंह जोर है। इसको आप खिलाते जाएंगे पिलाते जाएंगे और इसकी ख्वाहिशात पूरी करते जाएंगे तो ये एक बीस्ट बन जाएगा, एक ऐसा वैशी दरिंदा बन जाएगा कि जो हमें खुद ही खा लेगा। फिर ये कहीं रुकेगा नहीं। और मैंने मिसाल दी है ना, आप देखे होंगे उनको इसमें नहीं मजा आ रहा, आप तो सारा कुछ औरतों से सारे मजे ले लिए, अब चलो मर्दों के पास ही चले, जानवरों के पास चले और बच्चों के साथ बुरे काम करें, तो फिर रुकती नहीं है ये चीज। इसलिए अपने आप को बांधे, नेकों की मजलिसें इख्तियार करें। नंबर 3, अपने अंजाम के बारे में हमेशा फिक्रमंद रहें कि मेरा अंजाम क्या होगा, अगर मैं इसकी सुनती रही तो ये मुझे किधर तक ले जाएगा। अब मैंने जैसे आपको बताया कि जो लोग कहते हैं ना हमारे पास टाइम नहीं पढ़ने का, टाइम नहीं पढ़ने का, वो इसी के पीछे अपने आप को चूके, यानी इसके आगे खुद को डाला हुआ है, इससे नीचे हुए में खुद ऊपर नहीं हुए कि तू तेरी कैसी मिजाल के तू कहे कि टाइम नहीं, मैं टाइम निकालूंगी। नफ्स कहता सोए रहो, बड़ी अच्छी नींद आ रही, बड़ा मजा आ रहा है, इस वक्त ही तो नींद आई है, सारी रात तो मुझे नींद नहीं आई। नफ्स कहता सोया रहे, बड़ा मजा आ रहा है। तो वही चीज है ना कि ये नफ्स इंसान को कहाँ कहाँ पे रोक देता है नेकी से भलाई से, और वहीं जब अपने अंजाम की फिक्र होगी तो इंसान उठेगा। और बाज़ उलमा ने बड़े अच्छा एक तरीका लिखा कि जो जब इंसान का नफ्स जो है ना उसको उठने नहीं देता सुबह, तो फिर कहे कि अच्छा चलो नमाज नहीं पढ़ती, कम से कम बाथरूम तो यूज करना है, चलो बाथरूम यूज किया, अच्छा चलो वुजू कर ही लेती हूँ, नमाज नहीं भी पढ़ूंगी, चलो वुजू तो कर लो, वुजू कर लिया, अच्छा वुजू भी कर लिया है, आंख तो खुली गई है, चलो 2 नफल ही पढ़ लेती हूँ, ज्यादा नहीं, दो, सिर्फ 2 नफल पढ़ूंगी, 2 भी पढ़ लिया तो 2 और पढ़ लेती हूँ। इस तरह से करके उसको इंसान अपने काबू में लेकर आए, वरना अगर डायरेक्ट कहेंगे मुसल्ले पे खड़ा ना, हाँ ये नहीं थकन हुई भी है, सारा दिन भी तो गुजरना है, फिर सारा दिन खराब हो जाएगा, नींद खराब हो जाएगी, नींद भी तो लेनी जरूरी है, फिर कितने जहन में बातें आएंगी, बहाने आएंगे, कितना कुछ आएगा, तो उन बहानों को सोच लिया करेंगे, ये नफ्स ना बहाने फेंक रहा है मेरी तरफ, एक के बाद एक बहाना, एक के बाद एक बहाना, क्या करें फिर, ये कंटिन्यू कर नहीं सकेंगे ना। कई लोग कहते हैं नहीं जा फिर मैंने उस वक्त लूंगी जिस वक्त मैं ना सारी जिंदगी कर सकूं, कल का पता नहीं है, इनको गारंटी है नहीं है कल भी जिंदा रहना है, जब सारी जिंदगी नहीं फिर बाद में छोड़ना सही नहीं है ना, तो इसलिए उस वक्त करेंगे, ये नफ्स के बहाने देखो कैसे हैं। तो नफ्स हमसे अपनी इतात ना करवा सके, हमें उसको करना है कि वो हमारी इतात करे, ना कि हम उसकी इतात करना शुरू कर दें, हम उसके आगे हाथ बांध के ना खड़े हों, उसको ऐसा करना है कि वो हमारे आगे हाथ बांध के खड़ा हो के जो हम कहते हैं वो उसको माने। तो ये दिल दिल मर्जियां मर्जियां ख्वाहिशात, मेरा मैं अब ऐसे सोचती हूँ, मैं अब ऐसे करना चाहती हूँ, ये छोड़ दें, मैं मेरी, मैं मी माए आए, ये सब छोड़ दें, यही नफ्स है। तो ये नफ्स की ख्वाहिश अल्लाह ताला फरमाते हैं इल्म के बावजूद, तो इसकी फिर सजा क्या है? जो ऐसा बंदा हो जाता है ना, फिर उसने अल्लाह ताला को तो छोड़ दिया और नफ्स का बंदा बन के बैठ गया। तो अल्लाह ताला फरमाते खत्म आला समय ही व कल्ब ही, हमने उसकी मोहर लगा दी उसके कानों पे भी, उसकी समात पे, अब कोई बात सुनता भी नहीं। आप ऐसे लोगों को आप जितना मर्जी समझाते रहे, उनको समझ ही नहीं आएगी। ऐसे लगता है कानों के ऊपर ना मोहर लगी हुई है वाकई। और दिल समझने के लिए है ना, समझ भी नहीं आती, सुनते भी नहीं, सुनाई ही नहीं दे रहा। जैसे यानी आपने सुना भी दिया तो एक कान से गया दूसरे से निकल गया, क्योंकि मोहर लग चुकी है। और सूरह बकरा में अल्लाह तआला ने फरमाया ना, खत्म आला कल्बी ही, क्या उसमें उसमें उलट है ना। तो अल्लाह ताला ने देखें सुभान अल्लाह यहाँ पे इस चीज को बयान फरमाया कि उनकी समाअत के ऊपर अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी। वहां पे अल्लाह ताला ने समाअत को बाद में किया और इसको पहले, क्यों? इसलिए क्योंकि जब इंसान सुन के नहीं मानता, वहां पे खत्म आला कुलूबिहिम व आला समीहिम, यहाँ पे वो खत्म आला समीहिम व कल्बिहिम, समीही व कल्बी, वहां पे कुलूबिहिम पहले क्यों? आपको क्या लगता है? क्योंकि देखिए इन्होंने सुन लिया फिर भी नहीं माना ना, तो अल्लाह ताला ने मुहर लगा दी इनकी समाध पे। सुन के भी, जान के भी, तब भी ऐसे बन जाना, तो अल्लाह ताला फिर उस बंदे के लिए, क्योंकि उसके पास इल्म था, इल्म के बावजूद उसने ऐसा किया, तो अब इसको हिदायत नहीं मिल सकती, क्योंकि वो ना सुन सकता है ना समझ सकता है। वह जाला आला बसरी ही विशाबा, और वहां पे भी इसी तरह है ना, तो वाला अब सॉरी ही विशाबा, तो वहां पे प्लूरल में है, यहाँ पे सिंगुलर में। तो उसकी कानों के आगे भी पर्दा आ गया, ढांप लिया पर्दे ने, अब उसको कहाँ से हिदायत मिलेगी? फमई यहदी ही मिम बादिल्ला, क्यों, कौन उसको हिदायत दे सकता है अल्लाह के बाद? क्योंकि अल्लाह तआला ने फरमाया मई यहदी अल्लाह फला मुदिल्ला, जिसको अल्लाह हिदायत दे उसको नहीं कोई गुमराह कर सकता। और मैं यहदिल्ला फहुअल मुहतदी, ये भी है कि जिसको अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत याफ्ता है, हिदायत कहीं और से नहीं मिल सकती। अल्लाह ताला ना हिदायत दे तो उसके बाद कोई हिदायत दे नहीं सकता। तो इनका कसूर क्या था? ख्वाहिशात के बंदे बन के रहना, फिर ये अल्लाह ताला की हिदायत के काबिल भी नहीं रहते, यानी फिर उसके बाद ना ये अपनी सरकशी में ही रहते हैं, इसी तरह जिंदगी। आप देख लें इस वक्त दुनिया जो है, मैं हैरान होती हूँ, अगर आप इर्द गिर्द देखें तो दुनिया ज्यादातर, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो मुसलमान अपने आप को कहलाए, चाहे मुशरिक है, चाहे कुछ है, ज्यादातर दुनिया जो है वो ख्वाहिश की बंदी है। इवन क्रिश्चियन भी अपनी क्रिश्चियनिटी को छोड़ चुके हैं, वो भी ख्वाहिश के पीछे चल रहे हैं। आप किसी मजहब के बंदे को देख लो, उनमें कम ही लोग रह गए जो अपने मजहब को लेके बैठे हुए हैं। ज्यादा क्या है, एक यूनिवर्सल रिलीजन है, और वो रिलीजन क्या है? ख्वाहिश का बंदा, मेरी ख्वाहिश कहती है ना। तो फिर आप देख लें आज जो आप उसके ऊपर भी सोशल मीडिया पे देख लें, जो जो कुछ हो रहा है, आपको मेरे से ज्यादा पता है क्या क्या चीजें लोग कर रहे हैं। और दिल किया तो ये भी डाल दिया, ये भी कर लिया, अपने घरों की चीजें, अपनी घरों की कोई प्राइवेसी नहीं, हर चीज को लोगों के आगे लेके खड़े हो गए, अपनी प्रेगनेंसी की बातें बता रहे हैं, उसकी फोटो शूट हो रहे हैं, अब इस तरह से करके दिखा दो, बस सिर्फ इन होना है, सिर्फ पैसा चाहिए शायद। तो ख्वाहिश क्या है? पैसे की, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। उसके लिए औरतें क्या क्या कर रही हैं, और किस किस तरह से अपनी बातें बता रही हैं, कैसी कैसी वीडियोज बन रही हैं, कैसे कैसे चुटकुले बन रहे हैं, टिकटॉक में क्या बन रहा है, क्या चीज है? ख्वाहिश के बंदे हैं ना ये सारे, किसी को फॉलोइंग ज्यादा चाहिए, उसके पास पैसा है लेकिन फॉलोइंग चाहिए उसको, अब वो फॉलोइंग के लिए कुछ भी कर रहा है, उसकी ख्वाहिश क्या है? मेरे इतने फैंस हो बस। दूसरा बंदा, उसको पैसा चाहिए, वो पैसे के लिए कुछ भी मरा जा रहा है, वो चीजें बस जो इस तरह की अजीब ही कोई चीज हो, बस वो वाली निकाल के एक बताओ लोगों को, उससे ताकि मेरी फॉलोइंग हो जाए, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बस। तो ये आप देखें आवे का हवा क्यों बिगड़ रहा है, ख्वाहिशात के बंदे, ख्वाहिश है पीछे, इन्होंने ख्वाहिश को अपना इलाह बनाया हुआ है। ख्वाहिश जिधर को कहती है उधर को चल पड़ते हैं, जिधर से ख्वाहिश पूरी होगी ना वो काम चाहे दुनिया का बदतरीन काम ही क्यों ना हो वो करने को तैयार है खड़े, ख्वाहिश पूरी हो रही है ना। इसी तरह कई लोगों को शोहरत चाहिए होती, शोहरत के पीछे इतने पागल हुए जाते हैं कि वो अजीबो गरीब ऐसे काम तो बंदे की कभी सोच नहीं आती अल्लाह ये क्यों कर रहे हैं, वो असल में पीछे क्या है, वो काम करें नहीं करें लेकिन असल पीछे क्या है, शोहरत की ख्वाहिश। इस तरह मुझे लोग बहुत देखेंगे, मेरी वीडियो बहुत पॉपुलर होगी, कहाँ मेरा नाम चलो कुछ किसी तरह भी हो चाहे बदनाम हो के हो लेकिन हो जाए नाम, फिर आप पॉलिटिशियन को देखें सिर्फ इस चीज की ख्वाहिश कुर्सी की उनको कहां तक गिरा देती है। आप हर एक जगह में देख लें पीछे आपको यकीनन ख्वाहिश नफसी मिलेगी जिसकी वो इतात कर रहे हैं। अफला तदक करूं, फिर तुम नसीहत नहीं पकड़ते, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती। और चले हम सबको छोड़ दें, हम सिर्फ अपनी बात करें, अगर कहीं हमने भी अपना इला अपनी ख्वाहिश को तो नहीं बनाया हुआ, तो ख्वाहिश हमें ड्रैग करती है जिधर को चाहे ले जाए। आज दिल किया तो ये कर लिया, कल दिल किया तो कुछ और कर लिया, दीन के मामले में जो दिल किया वो किया, और अल्लाह ताला ने जो फराइज रखे हैं उनको नहीं देखा, क्योंकि वो दिल नहीं मेरा करता, उसके अंदर मन को मारना पड़ता है, उसके अंदर तकलीफ होती है, उसके अंदर कोई बर्दाश्त करना पड़ता है, उसके अंदर मैं इतनी इन नहीं रहूंगी, इसलिए उसको बिल्कुल साइड पे रख दे, उससे बिल्कुल आंखें बंद की नहीं है। और जो जो मुझे ईजी लगते हैं ना चलो एक खुदा को भी खुश कर लेते हैं ना, तो वो उतना सा सिर्फ वो कर लिया जिसमें कोई पेन ना हो, वो कहते हैं नो पेन नो गेन, यहाँ पे कहते हैं पेन ना हो बस गेन जरूर हो जाए। एक्सरसाइज भी आप करने जाते हैं ना तो वो कहते हैं नो पेन नो गेन, इससे गुजरोगे तो फिर ही तुम कुछ हासिल कर सकोगे, लेकिन दीन के मामले में हमारा क्या रवैया है, नो पेन लेकिन ऑल गेन। अब आप देखें ये जो हमने वेट लूज करना, वेट लूज करने के लिए इंसान क्या करता है, ऐसा नहीं कि वो खाता ही नहीं मार ही जाता है, ऐसा तो नहीं होता ना। अब आप कहेंगे लो क्या फिर हम अपनी ख्वाहिश ही ना कोई पूरी करें, अब हमारा क्या कसूर है, इस तरह से हम क्या करें फिर, नहीं आप देखें उससे आप सीखें, वो खाता है लेकिन वो अपने आप को कितना डिसिप्लिन करता है, मैंने ये नहीं खाना ये नहीं खाना, हर चीज को वॉच करेगा भाई इसमें कितनी कैलोरीज है, इसमें कितनी फैट है, इसमें कितना मेरा नुकसान है, इसमें मेरा वेट गेन हो जाएगा, वो सारा कुछ देख के फिर सिलेक्टेड चीजें खाएगा, वक्त पे खाएगा, इतनी देर मैंने इतना वक्फा देना है हर खाने के दरम्यान, उस तरह से खाएगा, अपने आप को डिसिप्लिन करता है ना, इसी तरह हमने नफ्स को डिसिप्लिन करना है। ये नहीं कि सारी ख्वाहिशात मार ही दी हमने, बस हम एक तरफ पहाड़ों में बैठ गए हैं, ना कुछ खाना ना कुछ पीना, अपनी हालत बुरी बना ली, इस तरह करने को कोई नहीं कह रहा, लेकिन आप इससे सीखें जैसे वो बंदा खा भी रहा है लेकिन उसने अपने आप को डिसिप्लिन किया क्योंकि वो कहीं आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए उसका वेट, इसी तरह कहीं हमारा नफ्स आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, हमने इसको बांध के रखना है, हमने इसको कंट्रोल करके रखना है, तू जो कहता है वो नहीं मैं करूंगी, मेरा अल्लाह जो कहता है मैं वो करूंगी, इस तरह के रवैये के साथ इसको लेके चलना है। तुझे मुश्किल हो रही है उठने में, तुझे मैं सीधा करती हूँ चल उठ, अपने आप को ये कहें, तुझे मुश्किल हो रही है ये करने, ये काम अल्लाह का हुक्म है ये क्यों नहीं करेगा तू, आज से मैं हिजाब लूंगी, मुझे नहीं किसी की परवाह। वो डराएगा, आए वो फिर क्या कहेगा, आए वो फिर क्या कहेगा, कोई परवाह नहीं। इस तरह नफ्स कंट्रोल किए जाते हैं, इस तरह नहीं कि हम मिन मिन आते हुए उसके सामने ही लेट जाएं और कहेंगे अच्छा जी हजूर आपने फरमा दिया, आपका फरमान सारा आंखों पे, अल्लाह का हुक्म तो मैंने पढ़ लिया वो साइड पे डाला हुआ है, मुझे पता है वो क्या है, छोड़ो उन चीजों को, अब हम 1400 साल पहले नहीं जा सकते, नहीं इसको सीधा करें, ये हमारी सारी जिंदगी की मेहनत है, ये एक दिन की नहीं है ना, जो सोचते हैं कि कुरान पढ़ लिया हाँ जी अब हम क्या करें, कुछ लोग ऐसे पूछते हैं या मैंने तो सारा कुछ कर लिया अब जी करें क्या, वो जो एक हिजाब ऊपर सर पे ले लिया उसको समझ लिया सब कुछ कर लिया, मैंने अबाया पहन लिया, कोई बहुत ही ज्यादा जिसने आगे बढ़ गया वो नकाब कर लिया, जी मैंने तो सारा कुछ कर लिया अब क्या करूं, हाँ जी सारा कुछ कर लिया नहीं है, ये नफ्स को तो टेम करना है अभी, इसको अपने काबू में लाना है, इसको सुधाना है, इसको सीधा करें तीर की तरह, कि ये मुझे फिर बुराई की तरफ ना लेकर जा सके। नफ्से हमारा बुराई की तरफ लेकर जाता है, उसको नफ्से मुतमाइना बनाना है, तभी तो हमारे लिए निदा आएगी, या तू नफ्सुल मुतमाइना। अगर हम अपने लिए चाहते हैं नफ्से मुतमाइना, चल अपने रब की तरफ, वो तेरे से राजी, तू उससे राजी, चल जन्नत में दाखिल हो जा। ख्वाहिश तो हम सबको है, पेन कितना उठाना है इसको सुधाने के लिए, वो कुछ नहीं है। ये नहीं होगा, इसको सीधा करना है, इसको नफ्से मुतमाइना बनाना है, बस ये मुतमाइन हो जाए अल्लाह की रजा पे, उसके हर हुक्म के ऊपर, चाहे मुझे इसके लिए अपनी ख्वाहिश का गला काटना पड़े, चाहे दोनों लोगों की बातें मुझे कितनी सुननी पड़े, चाहे मुझे कितना ही मुखालफत का सामना करना पड़े, मेरा नफ्स इतना मेरे काबू में आ जाए कि फिर ये मुझे तंग ना कर सके। क्या तो ये है ये आयत, जो बहुत अहम आयत है। वकालू, और फिर वो कहते हैं, जो ऐसे नफ्स के बंदे होते हैं, वो कहते हैं, माहिया हयातुन दुनिया, कोई नहीं जी, हमारी ये दुनिया की जिंदगी है, नमूत हुआ नाहिया, हम मरेंगे जिएंगे, वमा युहलिकुना इल्ला दहर, और हमें तो हलाक नहीं करता मगर जमाना। ये क्या कि भाई अल्लाह ताला ने एक मौत लिखी है, उस वक्त आती है मौत, अरे सर भाई हम पैदा हुए हैं, ये हमारी जिंदगी है, मदर नेचर है, कुदरत का खेल है जी, अब बूढ़े हो तो मरना ही है ना, या बीमारी आ गई तो फिर उससे मर गए, एक्सीडेंट हो गया उससे मर गए, इससे हो गया, तो ये तो कुदरत का खेल है, ये मदर नेचर, यानी अल्लाह ताला कोई नहीं है, अल्लाह ताला कोई नहीं है, ये सिर्फ बस नेचुरल एक प्रोसेस है ना जी। देखे ना, एक इंसान जिंदगी गुजारता है तो उसके बाद उसने मर ही जाना होता है, वो ये नहीं कहते कि अल्लाह ताला हमें पैदा करता है और मारता है, वो कहते हैं जमाना दहर, इसी से तो दहरियत निकला ना, एथिज्म, कि बस जमाने का उतार चढ़ाव है जी, रद्दो बदल है जमाने का, ये उनकी यही थियोरी होती है, साइंस ये कहती है ये कहती है, ये जो कौमें भी तबाह हुई उनके ऊपर ये नेचुरल डिजास्टर्स आए तो इस वजह से हुई। आप देखते हैं जब बोलते हैं, इसलिए उलमा इससे भी मना करते हैं, जब ये बोलते हैं ना कभी खबरों में, कुदरत का खेल, कुदरत की देवी, व्हाट इज दिस, आप ये क्यों नहीं कहते अल्लाह ताला ने ये किया, वो तो अल्लाह का नाम नहीं लेना, कुदरत उन पे मेहरबान हो गई, व्हाट इज कुदरत, आप में और उसमें क्या फर्क रहा जो यहां बैठ के बोल रहा है कि मदर नेचर ने ऐसा कर दिया, कुदरत क्या चीज है, अल्लाह क्यों नहीं कहते, यानी कुदरत कहने का मतलब होता है कि नेचुरली ये सारा कुछ हो रहा है, नेचुरल एक फिनोमेना है, उससे ये है, और कुदरत की देवी क्या होती है, ये हमारे मुसलमानों के ही बातें हैं, कई दफा खबरों में सुनी, और यहां के लोग मदर नेचर कह देते क्योंकि उन्होंने भी गॉड तो कहना नहीं, तो ये भी ये कहते हैं कि भाई देखो ये दुनिया की जिंदगी इसी तरह हम मरते हैं जीते हैं जी, ये तो एक प्रोसेस है, वमा लहुम बिज़ालिका मिन इल्म, इनके पास कोई इल्म नहीं है, इनके पास नहीं, इनके पास का कोई इल्म, ये ऐसे ही बातें करते जा रहे हैं, इनहुम इल्ला यदुनून, ये बस गुमान कर रहे हैं कि ये सब जमाने के फेर हैं, इनके पास क्या दलील है कि ये जमाने के फेर है? ये गुमान ही है ना। वह इदा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन, जब इनके पास हमारी आयात पढ़ी जाती हैं बिल्कुल खुली, अल्लाह ताला के कुरान की से तिलावत की जाती है इनके पास, इनके अकीदे का रद्द किया जाता है, इनको बताया जाता है कि कयामत बरहक है, अल्लाह ताला ने खड़े करना है तुम्हें, तो माँ का ना हुज्जा तुम, तो नहीं होती इनके पास कोई दलील, इनके पास कोई दलील नहीं होती एक्सेप्ट एक चीज के, जिसको ये अपनी दलील बना के पेश करते हैं, हालांकि वो कोई दलील नहीं है, ये इसको भी हुज्जत कह के इनके ऊपर टॉन्ट किया गया, तंज किया गया कि ये है इनके पास जो दलील, क्या कहते हैं आगे से, अनकालू तू भी इन कुन तुम सौदकी, कहते हैं ले आओ ना फिर हमारे हमारे बाप दादा को, अगर तुम सच्चे हो, नहीं अगर तुम इतना ही कहते हो कयामत आनी है अल्लाह ताला ने खड़े करना, तो फिर हमारे बाप दादा को जिंदा करके ले आओ, सिर्फ इनके पास ये दलील है, अपनी बात की कोई दलील लाओ ना, तुम कहते हो खुद ही सारा कुछ बन गया, हमने इसी तरह मर जाना है, खत्म हो जाना है, कुछ नहीं, दोबारा कोई खड़े होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर है तो फिर हमारे बाप दादा को जिंदा करके दिखाओ, किसने कहा कि यहाँ पे जिंदगी होगी, कहा गया कयामत आएगी उसके बाद अल्लाह ताला जिंदा करेगा, कहते नहीं नहीं इसका एक ट्रेलर हमें पहले यहाँ पे दिखाओ, कुलिल्लाहु युहयीकुम सुम्मा युमीतुकुम, कह दीजिए अल्लाह ही है वो जिंदा करता है फिर मौत देगा तुमको। अच्छा ये बताएं वो ऐसा क्यों कहते हैं, मैंने आपको बताया जो ख्वाहिशात नफ्स के बंदे होते हैं वो ये उनकी बात है कि वो ऐसा कहते हैं क्यों, कुछ आपको समझ आया? इसलिए ऐसा कहते हैं कि अगर कहेंगे अल्लाह ताला ने पैदा किया और मर के भी उसके पास चले जाना, और अल्लाह ही यह मौत देता है, अल्लाह ही यह जिंदगी देता है, जैसे यहाँ पे आपके कह दीजिए अल्लाह ही जिंदा करता है, एक मौत देता है, तुम यजमाओ को मिला योमिल क्यामत ला और बफी पे तुम्हें जमा किया जाएगा उस दिन क्यामत के दिन, उस घड़ी में जब जिसके बारे में कोई शक नहीं है ना। तो ये कहते नहीं जी आप खड़ा करके दिखाओ फिर बाप दादा को हमारे। तो ऐसा क्यों, वाय? इसलिए क्योंकि अगर ये मान जाएं तो अल्लाह ताला ने पैदा किया, अल्लाह ताला मौत देने वाला है, उसके पास फिर जमा होना है, एक दिन कयामत है, ये जमाना नहीं हमें मारता, अल्लाह के हम कंट्रोल में हो, उसके पास हमें जाके हाजिरी देनी, फिर तो कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे, फिर तो कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, मन को मारना पड़ेगा, फिर मनमानियां तो नहीं हो सकती, फिर वो तो नहीं हो सकता जो मेरा दिल करता है, फिर वो तो नहीं हो सकता, फिर तो अल्लाह की माननी पड़ेगी, वो तो हमने माननी नहीं, वो तो हमें मुश्किल लगता है, उस तरफ तो हमने आना ही नहीं। आपने देख लेना कि एक गॉड या अल्लाह ताला का नाम जो है वो लेना भी मुसलमानों में अब कितना मुश्किल हो गया, कि अल्लाह का नाम ले के बताया जाए कि अल्लाह ही है हमें जो करता है, अल्लाह ही है हमें जो मौत देता है, अल्लाह ताला ही हमारे सारे काम, ये भी खत्म हो गया। अगर बारिश हो रही है तो वो मेहरबान हो गई देवी, अगर किसी के पास पैसा आ गया लक्ष्मी देवी इसके ऊपर मेहरबान हो गई। अच्छा जी वो इस तरह की बातें करते हैं, यानी अल्लाह का नाम भी बीच में से हटा दो, अल्लाह ताला की रहमत उन पे बरसी, ये आपने कभी खबरों में सुना कि कहीं बारिश के लिए वो ये कह रहे हैं? तो ये बात, क्योंकि जब अल्लाह ताला का जिक्र बीच में आ जाएगा, जब उसकी जात को बीच में ले आओगे, फिर ख्वाहिशात कैसे पूरी करेंगे? फिर इंसान के अंदर ना एक ये चीज है कि वो अपनी मनमानी करना चाहता है, उसकी ख्वाहिश है कि मैं जैसे मैं चाहूं बस वैसे जीऊं, इस वजह से ये सारे स्लोगन्स बने हैं, मेरी मर्जी, ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जिंदगी एक दफा मिली है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ये सारे इसलिए बने हैं क्योंकि वो जो अंदर की ख्वाहिश है ना कि मैं वैसे जीऊं जैसे मैं चाहती हूं, मुझे कोई कंट्रोल करने वाला ना हो, मुझे कोई ना कहे ये ऐसे करो वैसे करो, मेरा दिल करे तो करूं, दिल ना करे ना करूं। जैसे लोग कहते हैं ना मुझे तो इसमें कोई लॉजिक समझ नहीं आती, वो क्या है, वो अपना मन नहीं मान रहा ना, इसलिए लॉजिक भी नहीं आपको समझ आएगी, आएगी नहीं, फिर तो खत्म अल्लाह वाला कुलूबी वाला समीम वाली बात हो जाएगी, या जैसे यहां पे कहा गया, फिर तो कानों पे भी पर्दे पड़ गए, फिर समझ आनी कैसे है। तो ये जो मनमानी करने की ख्वाहिश है ना, ये फिर आखरत का इनकार ही करवाएगी, और क्या करेगी, क्योंकि या तो आखरत पे बिलीफ हो सकता है या मनमानियां हो सकती हैं, एक ही चीज होती है, तो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन है, जो आखरत के ऊपर यकीन कर लेगा वो तो मनमानी बेचारा कैसे कर सकता है, उसे तो हर वक्त उसके तो जान इसी पे हलकान रहेगी कि अल्लाह ताला तेरे आगे खड़े होना मैं क्या करूं, अल्लाह मैं तेरा सामना कैसे करूंगी, अल्लाह मेरी जिंदगी तो इस काबिल नहीं, करके भी वो रोता रहेगा, उसको तो फिक्र इतनी रहेगी, क्यों हमारे असलाफ रोते रहते थे, क्यों इतने परेशान रहते थे, क्यों आखरत की फिक्र में कहते थे काश एक परिंदा होता, काश मैं एक दरख्त होता जिसको काट लिया जाता, काश कयामत का दिन मैं ना देखता, मेरा तो ये बराबर सराबर भी हिसाब हो जाए तो मैं समझूंगा कि मेरे लिए काफी है, वो क्यों ऐसे कहते थे? तो इसलिए कि आखरत का यकीन था ना, जब आखरत का यकीन ना हो तब भी इंसान मनमानियां करता है, तब भी इंसान इनकार करता है, तभी इंसान का इम्तिहान ही यही है ना, कि वो इम्तिहान इस दुनिया में है ही ये, कि वो अल्लाह ताला के सामने खड़े होने को याद कर रख के जिंदगी गुजारता है या अपनी मनमानी वाली जिंदगी गुजारता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने खुली छुट्टी दे दी ना, चाहे तुम अपनी मनमानी करो, चाहे तुम अल्लाह ताला की बात मान के चलो, ये अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ये ओपन रख दिया, ये तुम जिधर चाहो, तुम जौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहो कर लो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वला कि न अक्सर अन्नासी ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग इल्म नहीं रखते, अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते कि हाँ, इस चीज का इल्म नहीं रखते, अल्लाह ही जिंदगी देने वाला है, वो ही मौत देने वाला है, मौत भी उसके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं, डॉक्टरों के हाथ में नहीं, अस्पतालों के हाथ में नहीं, जिंदगी भी उसी के हाथ में और मौत भी उसी के हाथ में। तुम उसी के भेजने से दुनिया में आए हो, उसी के ले जाने से दुनिया से जाओगे। अल्लाह अकबर। और उसी की मर्जी से जिस दिन वो चाहेगा उठा के खड़ा करेगा। तो वो ऐसी बातें करते थे, और ऐसी बातें आम इंसान के मुंह से नहीं निकल सकती। ये जो सारी जितने भी आप ये जो बुराइयां बड़ी बड़ी सर उठा रही हैं ना, ये आजकल जो जैसे मैंने कहा कि गेज है और ये है, ये सारी इसीलिए इतनी ऊपर जा रही कि आखरत के ऊपर ईमान खत्म हो गया, आखरत के बारे में लोगों का अकीदा नहीं है या बिल्कुल कमजोर है।